पहला राजा अध्याय 22, अध्याय 22 पद 1 से लेकर 7 तक। और 3 वर्ष तक आरामी और इसराइली बिना युद्ध रहे। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशोपात इसराइल के राजा के पास गया। तब इसराइल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उसे आराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? और उसने यहोशोपात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? यहोशोपात ने इसराइल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूं, जैसी तेरी प्रजा है वैसे ही मेरी भी प्रजा है, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे ही मेरे भी घोड़े हैं। फिर यहोशोपात ने इसराइल के राजा से कहा कि आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इसराइल के राजा ने नबियों को, कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। परंतु यहोशोपात ने पूछा, क्या यहां यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले? उसने कहा, वहां एक मनुष्य मिकाया है, परंतु उसने कभी भली भविष्यवाणी नहीं की, वो सदा कुछ बुरा ही बताता है। उसने कहा, ओह ऐसा मत कहो, हम उसे बुलाएंगे और देखेंगे कि वो क्या कहता है। उसी समय एक नबी सिदकिया ने लोहे के सिंग बनाकर अपने सिर पर रखकर दौड़ते हुए कहा, पद 11 से लेकर 13 तक। तब कनाना का पुत्र सिदकिया ने लोहे के सिंग बनाकर कहा, यहोवा यू कहता है कि इनसे तू आरामियों को मारते मारते नाश कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। और जो दूत मिकाया को बुलाने गया था उसने उससे कहा, सुन, भविष्यद् वक्ता एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। देखो सब पुरुषों ने अच्छी भविष्यवाणी की है, इसलिए चलकर कुछ अच्छी भविष्यवाणी कर, कुछ भी बुरी भविष्यवाणी न करना। ऐसा उसने कहा, नबी ने उत्तर में कहा, अध्याय 22 पद 14 और 15। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूंगा। जब वो राजा के पास आया तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहें? उसके उत्तर में उपहास था, इसलिए आहाब ने सोचा कि उसने यूं ही कह दिया। पद 15 में आगे लिखा है, उसने उसको उत्तर दिया, हां चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। निस्संदेह उसने उत्तर कुछ इस प्रकार दिया था कि आहाब ने समझा कि वो मन से नहीं कह रहा है। अध्याय 22 पद 16। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझे सच ही कह? उसने कहा, ठीक है, तू सच सुनना चाहता है? अध्याय 22 पद 17। मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इसराइल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों की नाई पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का ये वचन आया कि वे तो अनाथ है, अतः वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। दूसरे शब्दों में वो आहाब की मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहा है। लोगों का चरवाहा, लोग पहाड़ पर तितर बितर हो गए क्योंकि उनका चरवाहा मारा गया। अध्याय 22 पद 18। तब इसराइल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वो मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करेगा, वो कभी भली बात नहीं कहता। अध्याय 22 पद 19 से लेकर 22 तक। मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का ये वचन सुन, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दहने बाएं खड़ी हुई स्वर की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, आहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वो गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए, तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यत वक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। ये बड़ी रुचिकर बात है। मिकाया ने स्वर का दर्शन देखा, सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दहने बाएं खड़ी हुई स्वर की सेना देखी। परमेश्वर ने पूछा, आहाब को कौन ऐसे बहकाएगा कि वो गिर पड़े? स्वर्गदूत विभिन्न तरीके बताते हैं, परंतु एक आत्मा ने कहा, मेरे पास एक योजना है। वो क्या है? मैं उसको झूठे भविष्यत वक्ताओं द्वारा बहकाऊंगी। परमेश्वर ने कहा, यह ठीक रहेगा, आगे बढ़ो। परमेश्वर क्यों एक झूठ बोलने वाली आत्मा को आज्ञा दे? ये तो उचित नहीं जान पड़ता। बहुत बार हम दृश्य को ठीक से नहीं समझते। शैतान भी परमेश्वर का दास है, वो भी परमेश्वर की योजना को पूरा करता है, इसलिए परमेश्वर ने उसे अस्तित्व में रहने दिया है और उसे स्वतंत्रता दी है। वो जंगल में अपनी इच्छा से कार्य करता है, तो भी अधिकार परमेश्वर के पास है। हमने अपने विचारों में बड़ी गलती की है, क्योंकि हम शैतान को परमेश्वर का विरोधी समझते हैं। शैतान परमेश्वर के बराबर नहीं है। परमेश्वर आदि से सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जब शैतान की रचना की गई थी और वो स्वर्ग दूतों की समानता में था, इसलिए यदि हम शैतान की तुलना करें तो हम मिकाएल प्रधान स्वर्गदूत से उसकी तुलना कर सकते हैं। वो परमेश्वर के बराबर पदवी नहीं रखता है, वो परमेश्वर के अधिकार के अधीन रहता है। वो विरोध कर सकता है, परंतु बराबरी नहीं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, शैतान अपनी सामर्थ्य में सीमित है, अर्थात अपनी योग्यता और शक्ति में। उसे परमेश्वर ने सीमित किया है। परमेश्वर उससे कहता है, तो यहां तक जा सकता है, इससे आगे नहीं। शैतान ने आयुब के बारे में अपनी सीमा की शिकायत की थी, तूने उसके चारों ओर बेड़ा बांधा है, मैं उस तक नहीं पहुंच सकता। वो शिकायत कर रहा था कि परमेश्वर ने उसके कार्यों को सीमित कर रखा है, इसलिए शैतान को एक सीमा तक स्वतंत्रता है। प्रभु ने उसे सीमित किया है, परंतु वो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करता है। यहां परमेश्वर ने झूठ बोलने वाली आत्मा का प्रयोग किया कि अपना उद्देश्य पूरा करे। वो आई और झूठे नबियों ने आहाब को झूठ बोला और उसे प्रोत्साहित किया कि वो रामोत गिलाद के विरुद्ध जाए। इसलिए आहाब ने सच्चे नबी मिकाया को बुलाया, जिसने कहा, उसको कैद में रखो जब तक शांति न हो जाए, और कहा, यदि तू वापस लौट पाया तो मैं परमेश्वर का नबी नहीं हूं। इसलिए वो गिलाद के रामोत को चल पड़े। यहूदा का राजा यहोशापात आहाब के साथ गया। जब वो आराम के विरुद्ध गिलाद के रामोत की ओर बढ़ रहे थे, आहाब ने यहोशापात से कहा, तुम मेरे रथ और सब ले जाओ, मैं साधारण वेश में युद्ध में आऊंगा। इसलिए उसने राजा के वस्त्र उतार दिए ताकि वो स्वयं युद्ध में जा सके। वो मानो युद्ध के लिए उतावला था, इसलिए उसने अपने राजा का रथ हटाकर दूसरा रथ ले लिया ताकि वो घमासान के स्थान में जा सके। उसी समय आरामियों के सेनापति ने अपने लोगों से कहा, हमें तो राजा चाहिए, इसलिए वायदा करो हम आहाब को पकड़ेंगे। यदि हम उसे मारे तब तुम जानते हो बाकी के लोग हतोत्साह हो जाएंगे। उन्होंने यहोशापात को आहाब के रथ में उसके वस्त्र पहने बैठा देखा तो उन्होंने उसे आहाब समझकर उसके रथ का पीछा किया। यहोशापात पैदल भागने लगा और वे लोग लड़ाई की तरफ ध्यान न देते हुए उसका पीछा करने लगे। वे एक ही मनुष्य के ऊपर ध्यान लगाए थे, यही तो वे चाहते थे। और अंत में जब उन्होंने उसे पकड़ लिया तब जाना कि वो आहाब नहीं था पर वो यहोशापात था। ये एक रोचक वर्णन है। अध्याय 22 पद 34। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया, दूसरे शब्दों में किसी सैनिक ने शत्रुओं की ओर तीर छोड़ा और वो अचानक आहाब को लगा। अध्याय 22 पद 34 से लेकर 39 तक। और वो इसराइल के राजा के झिल्म और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूं, इसलिए भागडोर फेर कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में औरों के सहारे अरामियों के सम्मुख खड़ा रहा और सांझ को मर गया और उसके घाव का लहू बहकर रथ के पायदान में भर गया। सूर्य डूबते हुए सेना में ये पुकार हुई कि हर एक अपने नगर और अपने देश को लौट जाए। जब राजा मर गया तब शमरोन को पहुंचाया गया और शमरोन में उसे मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शमरोन के पुखरे में धोया गया तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया और वेश्याएं यही स्नान करती थी। आहाब के और सब काम जो उसने किए और हाथी दांत का जो भवन उसने बनाया और जो जो नगर उसने बसाए थे, ये सब क्या इसराइली राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? ये रोचक है कि मगिदो शहर उन शहरों में से एक है जिसकी पुनस्थापना आहाब ने की थी। वास्तव में मगिदो शहर के लगभग 20 विभिन्न स्तर हैं, जो शहर के ऊपर शहर बसाने के कारण है। ये स्थान बहुत समय तक युद्ध स्थल रहा है, इसलिए जब एक शहर नष्ट हो जाता था उस पर उन्होंने एक और शहर बसा लिया। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने यह स्थान गहराई तक खोदा और लगभग 20 विभिन्न सभ्यताएं या विभिन्न आवासीय स्तर पाए। आहाब के समय के शहर में बाल देवता के मंदिरों के अवशेष मिले जो आहाब ने बनवाए था। वहां उन्हें हजारों मटके मिले जिसमें बच्चों के कंकाल हैं, जो उनके माता पिता के द्वारा बाल देवता को बलि किए गए थे। इससे हम समझ जाते हैं कि परमेश्वर क्यों इस घृणित संस्कार का सफाया करना चाहता था। मनुष्य अपने ही बच्चों की अपनी देवता की उपासना करने को बलि चढ़ाते थे। आहाब की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अहजायाह उसके स्थान पर राज्य करने लगा और दूसरी ओर यहोशापात यहूदा पर राज्य करने लगा। आपको याद होगा कि हमने देखा था इसराइल के दो राज्य हो गए, उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य। अब कुछ देर के लिए दक्षिण राज्य की ओर चले। हमने काफी समय उत्तरी राज्य में बिताया है, आहाब के कारण नहीं, एलिया के कारण। वो वास्तव में कहानी का मुख्य चरित्र बन गया था। उसी के कारण आहाब दृश्य में आया था क्योंकि उस समय के इतिहास में एलिया प्रमुख चरित्र था। अब दक्षिण राज्य जहां दाऊद के वंशज राजगद्दी पर है, अध्याय 22 पद 41। इसराइल के राजा आहाब के चौथे वर्ष में आसा का पुत्र यहोशोपात एक अच्छा राजा यहूदा पर राज्य करने लगा, अर्थात वे कुछ समय तक सहशासक रहे, अध्याय 22 पद 42 से लेकर 44 तक। जब यहोशोपात राज्य करने लगा तब वो 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा, और उसकी माता का नाम अजूबा था जो शिलही की बेटी थी, और उसकी चाल सब प्रकार से उसके पिता आसा की सी थी, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वो करता रहा, और उसे कुछ न मुड़ा तो भी ऊंचे स्थान ढाए न गए। प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर पूजा स्थलों में उस समय भी बलि किया करते थे और धूप भी जलाया करते थे। यहोशोपात ने इसराइल के राजा से मेल किया। आपको याद होगा आहाब के निमंत्रण पर यहोशोपात उसके साथ रामोत के गिलाद में युद्ध करने को गया था, इसलिए इन दोनों राजाओं में संधि हो गई थी, अध्याय 22 पद 45। और यहोशोपात के काम और जो वीरता उसने दिखाई और उसने जो जो लड़ाइयां की, ये सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? हम इनकी कहानी इतिहास की पुस्तकों में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास यहूदा के राजाओं का इतिहास है पर इसराइल के राजाओं का इतिहास नहीं है, अध्याय 22 पद 46 और 47। पुरुषागमियों में से जो उसके पिता आसा के दिनों में रह गए थे उनको उसने देश में से नाश किया। उस समय एदोम में कोई राजा ना था, एक नायब राजकाज का काम करता था। ये मृत सागर के दक्षिण में समुद्र के किनारे का स्थान है, वहां कोई राजा नहीं था, केवल एक राज्यपाल राजकाज देखता था, अध्याय 22 पद 48 से लेकर 53 तक। फिर यहोशोपात ने तर्शीश के जहाज सोना लाने के लिए ओपीर जाने को बनवा लिए, परंतु वे यश्योन गेबेर से टूट गए, इसलिए वहां ना जा सके। तब आहाब के पुत्र अहजया ने यहोशोपात से कहा, मेरे जहाजियों को अपने जहाजियों के संग जहाजों में जाने दे, परंतु यहोशोपात ने इनकार किया। निदान यहोशोपात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसके पुरखाओं के साथ उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा यहोशोपात के 17वें वर्ष में आहाब का पुत्र अहजा शमरोन में इसराइल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक इसराइल पर राज्य करता रहा, और उसने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और उसकी चाल उसके माता पिता और नाबाद के पुत्र यरोबाम की सी थी जिसने इसराइल से पाप करवाया था, जैसे उसका पिता बाल की उपासना और उसे दंडवत करने से इसराइल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित करता रहा, वैसे ही अहजया भी करता रहा। हमारा प्रभु का भला हाथ आपकी अगुवाई करे और आपका मार्गदर्शन करें कि आप उसके प्रेम में चल सके, कि आप उसकी आत्मा से भरकर परमेश्वर की योजना को जान सके जो परमेश्वर ने आपके जीवन में रखी है। परमेश्वर आपसे बातें करें और आप ध्यान से उसकी आवाज सुनकर समझ सके। परमेश्वर का आत्मा आपका मार्गदर्शन करें। परमेश्वर की आशीष आप पर हो और वो आपको अपने प्रेम में बनाए रखें।